संपन्न स्टेज का गायन है,
संपन्न स्टेज
या अभी का गायन है?
संपन्न,
संपन्न स्टेज का गायन है। और
महाभारत में जब दिखाते हैं पार्थ और कर्ण को लड़ाई हो गया
है,
पार्थ अर्जुन
अर्जुन
और कर्ण,
अर्जुन और कर्ण की जब लड़ाई होती है,
कर्ण का उनका रक्त
गिर जाता है,
गिर जाता
है,
इधर ऐसे कैसे ये शूटिंग होता है?
शूटिंग होता है। ब्राह्मणों की दुनिया में कर्ण, कृष्ण और क्राइस्ट, इनकी राशि मिलती जुलती है या नहीं है? है, मिलती जुलती है। और पांच पांडवों से कर्ण बड़ा था या छोटा था? बड़ा था। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में पांच पांडव तो छोटे हैं, लेकिन कर्ण के रूप में पार्ट बजाने, कर्ण माने कान, कान का क्या पार्ट होता है? सुनना और सुनाना। तो उसने यही पार्ट बजाया, क्या ज्ञान बहुत सुना, सबसे जास्ती कौन सुनता है? ब्रह्म की आत्मा सुनती है। तो बड़े कान वाला है, मुसलमानों में हातिम ताई की जो कहानी आई है उसमें हातिम का साथ ही दिखाया है, वो बड़े कान वाला दिखाया है। बड़े कान वाला कौन सा जानवर होता है? हाथी, वो हाथी का पार्ट है, महारथी का पार्ट है, लेकिन महावीर का पार्ट नहीं है। तो कर्ण कोई दूसरी आत्मा नहीं है। कर्ण किसका पुत्र था? सूर्य का पुत्र था। और ब्रह्मा किसका पुत्र था? सूर्य पुत्र था। तो ये सूर्य पुत्र कर्ण वास्तव में कुंती का बड़ा पुत्र कहा गया है, लेकिन उसने पार्ट किस तरफ से बजाया? कौरवों की ओर से बजाया या सच्चाई की ओर से पार्ट बजाया? कौरवों की ओर से पार्ट बजाया। ब्रह्मा की आत्मा भी अभी किस तरफ से पार्ट बजा रही है? कौरवों की तरफ से पार्ट बजा रही है। वो चाहे तो भी उनका साथ नहीं छोड़ सकता। तो कर्ण वाली आत्मा कहो, कृष्ण वाली आत्मा कहो, उसने 68 में शरीर छोड़ा, रथ गिर गया, रथ धराशायी हो गया। और जो राम वाली आत्मा या अर्जुन वाली आत्मा, वो रथ पर विराजमान थी, और वो विजयी हो गया। रथों में भी श्रेष्ठ रथ कौन था और कमजोर रथ किसका था? अर्जुन का रथ मुकर्रर रथ साबित हुआ और कर्ण का रथ कमजोर साबित हुआ, टेम्परेरी रथ साबित हुआ। बाकी दानवीर था कौन? कर्ण। माने ब्रह्मा बाबा दानवीर नहीं थे, है? थे। ब्रह्मा बाबा दानवीर थे और अंत तक दानवीर रहे, यहां तक कि जब कलकत्ते की दुकान का बंटवारे की बात आई तो ब्रह्मा बाबा ने भागीदार से एक भी पैसे का हिसाब नहीं लिया, जो उसने दे दिया सो ले लिया। नहीं तो राम वाली आत्मा को एक एक पैसे का हिसाब देना चाहिए था, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच में झगड़ा हो गया और वो हिसाब नहीं दिया गया। तो राम वाली आत्मा को गरीब घर में जन्म मिलेगा, कंगाल घर में जन्म मिलेगा, कंगालों के गांव में जन्म मिलेगा या साहूकारों के यहां जन्म मिलेगा? कंगालों के यहां जन्म मिलेगा।
और महारथी और महावीर में फर्क है?
महावीर सिर्फ भगवान को कहा जाता है। हिंदुओं में महावीर हनुमान को कहा जाता है, जैनियों में महावीर अंतिम तीर्थंकर को कहा जाता है। वास्तव में हिंदुओं के जो 24 अवतार माने गए हैं उनको ही जैनियों ने फॉलो करके 24 तीर्थंकर बनाए लिए, नहीं तो 24 भगवान भी नहीं होते और 24 तीर्थंकर भी नहीं होते। एक ही असली तीर्थंकर है जिसको महावीर कहा जाता है। जो महारथी होते हैं वो हाथी के समान पुरुषार्थ करने वाले होते हैं। संसार रूपी जंगल के शेर नहीं है, वो झुंड में रहने वाले हाथी है। उन हाथियों को माया ग्राह क्या करती है? हप कर लेती है। लेकिन महावीर को माया रूपी ग्राह हप नहीं कर सकता। वो महावीर एक ही होता है और महारथी ढेर के ढेर होते हैं। जो संगठन बना करके रहते हैं,
महावीर को भी कलयुग का आदि में दिखाया था।
जैनियों में महावीर को 2500 साल पहले बताया है, उसके 50 साल के बाद महात्मा बुद्ध का जन्म दिखाया है। महात्मा बुद्ध की असली हिस्ट्री मिलती है। महात्मा बुद्ध के समय का जो भी लिटरेचर है, साहित्य है, उस साहित्य में कहीं भी महावीर का नाम नहीं आया है। 50 साल पहले महावीर हुए, 50 साल के बाद महात्मा बुद्ध हुए, तो नाम नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। इससे साबित होता है कि आज से 2500 साल पहले कोई भी महावीर नहीं हुआ। ये वर्तमान संगम युग की कहानी है महावीर की।
और
अंतिम क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन।
अरे अंतिम नहीं होता
आज के लिए,
रावण के सिर तो निकलते ही रहेंगे
आज के लिए।
हाँ,
एक दशा अवतार में बाबा बोलते रामकृष्ण को छोड़ करके बाकी सब जनरल ये अवतार।
हाँ जी,
मतलब की ये बामन और परशुराम वो भी मनुष्य रूप में दिखाता है ना।
जो बावन अंगुल है, पांच अंगुल, दस अंगुल, फिर पांच अंगुल, ऐसे करके सिर्फ कितने 52 अंगुल का कितना हुआ, छोटा सा हो गया। वास्तव में इतना कोई मनुष्य होता नहीं है
बाबा, सर्कस में आएगा छोटा छोटा
मनुष्य नहीं होता है वास्तव में
मनुष्य।
अफ्रीका में कौन कहे जाते हैं, अफ्रीका में जो होते हैं वो तो फिर भी बौने बड़े होते हैं, और ये 52 अंगुल तो बहुत ही छोटा हो गया। अगर ऐसा कोई मनुष्य होता तो उसके कुल में ऐसे मनुष्य होने चाहिए 52 अंगुल के नहीं, कोई नहीं है। पहले उन्होंने अगला प्रश्न कर दिया, अंतिम है ही नहीं। हाँ बोलो, है अच्छा, एक एक का अंतिम होगा तो ये अंत होने वाला नहीं है।
आजकल का दिन बाबा तमिलनाडु में क्यों नहीं पधारते
हैं?
आजकल का दिन तमिलनाडु में बाबा क्यों
नहीं पधारते? अब तमिलनाडु सिर्फ सेलम में ही नहीं है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी है। हाँ तो चेन्नई में अभी पिछली बार तो होके आए ही, तो आपने सिर्फ सेलम को क्यों समझ लिया तमिलनाडु? हैं?
एक साल हो गया।
हाँ जी, मेरी मधुबन से संख्या इतनी ज्यादा खुल रही है तो गीता पाठशालाओं में जल्दी जल्दी जाना हो सकेगा। मिनी मधुबनों की संख्या ही 20-21 हो गई, तो गीता पाठशालाओं में बार बार कैसे जाना होगा? आप मिनी मधुबन को जल्दी, आप अपनी गीता पाठशाला को जल्दी से मिनी मधुबन का रूप दे दीजिए। क्या? हाँ, बाबा ने भी बोला है गीता पाठशाला का ऐसा नक्शा बनाओ जो मधुबन जैसा दिखाई दे। क्यों नहीं आवेंगे?
हाँ बाबा, इनकी प्रश्न है,
है?
ब्रह्मा से विष्णु होते हैं या तीन
है?
ब्रह्मा से विष्णु तीन होते हैं,
ब्रह्मा से विष्णु तीन होते हैं बस,
जगत पिता, जगत अम्बा और वैष्णवी देवी,
और नहीं होते
पता नहीं
है। ब्रह्मा से विष्णु समान सिर्फ तीन ही आत्माएं बनती हैं क्या? तीन बनती है या कम ज्यादा आत्माएं ब्रह्मा से विष्णु बनती है? पांच ब्रह्मा गए हुए हैं, पंचानन कहा जाता है ब्रह्मा को, चतुरानन कहा जाता है, तो ब्रह्मा चार पांच हो गए। उनमें भी चतुरानन बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि उसका जो चित्र बनाया हुआ है वो आंखों से देखने में आता है। पांचवा मुख कहते हैं काट दिया गया, देवान अलग कर दिया और आत्मा सिर अलग कर दिया। तो वो आत्माभिमानी बनने के कारण ब्रह्मा की स्टेज में नहीं गाया जाता। शंकर की स्टेज में गाया जाता है और चित्रण किया जाता है। शंकर का जो विराट रूप है उसमें कितने मुख दिखाई जाते हैं? पांच मुख दिखाए जाते हैं। जो विष्णु का चित्र है उसमें चार भुजाएं चार आत्माओं के पार्ट की सूचक है। और अव्यक्त वाणी में बोला है ब्रह्मा की भुजाएं विख्यात हैं। तो भुजाएं बाप के बिना कर्तव्य नहीं कर सकती। भुजाओं को चलाने वाला है तो भुजाएं चलती हैं। भुजाएं स्वयं निर्जीव होती हैं या चैतन्य होती है? भुजाएं सिर्फ भुजाएं सर उड़ा दिया जाए भुजाएं निर्जीव होती हैं और अगर उनको चलाने वाला है तो सजीव है। तो जो विष्णु का चित्र है उसमें राम वाली आत्मा चलाने वाली बन जाती है। विष्णु का सिर है और बाकी चार भुजाएं ब्रह्मा के साथ सरस्वती और जगदम्बा के साथ लक्ष्मी। ये चार भुजाएं चलने वाली है। चलाने वाला कोई पांचवी आत्मा अलग है। इसलिए तीन ब्रह्मा नहीं है, कितने हैं? पांच ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं होती है।
उनके प्रश्न है जगदम्बा शरीर जो है ब्रह्मा को विष्णु कैसे करते?
जगदम्बा जो है उसका अर्थ ही है जगत की अम्बा और ब्रह्मा का अर्थ क्या है? ब्रह्मा ने बड़ी ती बड़ी माँ। तो दुनिया की बड़ी ती बड़ी माँ प्रैक्टिकल में कौन है? कहाँ ब्रह्मा बाबा हुए? ब्रह्मा बाबा तो 68 में ही शरीर छोड़ दिया। सारी दुनिया ने उनको अम्मा के रूप में कहाँ पहचाना? सारी दुनिया जिसको जगदम्बा के रूप में स्वीकार करे वो कौन? वही ब्रह्मा की सोल जो 68-69 में शरीर छोड़ती है और कोई माता के चोले में प्रवेश करती है तब जगदम्बा के रूप में उसकी मूर्ति पूजी जाती है। नहीं तो पुरुष चोला होने के कारण दाढ़ी मूछ वाला होने के कारण ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। तो दोनों अलग अलग हैं या एक ही है? पाटदारी एक ही है। उसको जगदम्बा कह दो, उसको ब्रह्मा कह दो, वही जगदम्बा जब स्वभाव संस्कार से तब्दील होकर के विजयमाला की हेड लक्ष्मी के समान बनती है तो दोनों के संस्कार मिलने के कारण उसको महालक्ष्मी कहा जाता है। महालक्ष्मी भी है तो महानारायण भी है।
द्वापर में जैसा अभी कहा गया नारद दूसरा नारायण नारायणी होते हैं, उनका माँ बाप होता है योग माया, और जो उनका माँ बाप है
उनके माँ बाप योग माया नहीं होते, उनके माँ बाप के माँ बाप
बीज रूप का भी माँ बाप
है,
जो इस्लाम धर्म का बीज
रूप। पहले आप ये बताइए पूछना क्या चाहते हैं।
अभी दूसरा नारायण नारायणी तो इस्लाम धर्म के आधारभूत को कहा गया ना,
आधारभूत हाँ जी,
तो जिनका माँ बाप को कहा गया ना माँ योग माया,
हाँ उनके माँ बाप यानी उनको जन्म देने वाले माँ जो होती है वो योग माया है।
तो उनका माँ बाप जो होता है वो राम की आत्मा है क्या?
हाँ जी परदादे,
हाँ परदादे मतलब ग्रैंड फादर ही तो है,
ग्रैंड फादर का भी बाप, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर।
तो फिर सर दो जनरेशन हुआ
है,
दो जनरेशन हुआ,
तीन जनरेशन हो गई, एक नारायण वाली जनरेशन,
हाँ
एक नारायण को जन्म देने वाली जनरेशन,
हाँ
और जन्म देने वाले की भी जन्म देने वाली जनरेशन।
जन्म देने वाले की जो जनरेशन है वो योग माया,
हाँ जी
उनका भी माँ बाप,
जो नारायण को जन्म देने वाली माँ है हाँ। वो योग माया। हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था कि न वो घर के अंदर मारा जाएगा और न घर के बाहर मारा जाएगा, अब हिरण्यकश्यप है कौन ब्राह्मणों की दुनिया में? जो भी सन्यासी है वो क्या है? हिरण्यकश्यप है। वो हिरण्यकश्यप क्या कहता था? भगवान कोई नहीं होता है, भगवान सिर्फ मैं ही हूं, मेरी पूजा करो। तो जो हिरण्यकश्यप अपने को ही भगवान कहता था शिवो अहम्, उसको ये वरदान मिला कि न मैं घर के अंदर बनू और न घर के बाहर। तो घर क्या हुआ है? न घर के अंदर मरू न घर के बाहर मरू। अरे सारी दुनिया में आज किसका राज्य है? रावण कौन? ये गुरु लोग। तो उन गुरुओं की लिस्ट में हिरण्यकश्यप आते हैं या नहीं आते हैं? वो सन्यासी उन गुरुओं की लिस्ट में आते हैं ना। तो रावण हो गए, हिरण्यकश्यप को ही रावण का आगत कह दिया। सारी दुनिया में किसका राज्य है? हिरण्यकश्यपों का राज्य है। मुसलमानों में इस्लामियों में चले जाओ तो मुल्लाओं का राज्य है, मौलवियों का राज्य है, हिंदुओं में चले जाओ तो इन सन्यासियों का राज्य है, बड़े बड़े मिनिस्टर कहाँ जाके माथा टेकते हैं सन्यासियों के सामने। क्रिश्चियंस में चले जाओ तो जो पोप है, पादरी है, उनके सामने जाकर माथा टेक देते हैं। तो ये रावण का राज्य सारी दुनिया में फैला हुआ है, सारी दुनिया उनका घर हो गई। क्या हो गई? घर। जो 5000 वर्ष की दुनिया है उस दुनिया में 2500 साल इन रावणों का राज्य चलता है। ये 500 करोड़ की दुनिया उनका घर है, कहीं भी उनकी विजय ही विजय है, वहां कोई उनको नहीं मार सकता। और घर के बाहर क्या है? इस दुनिया के बाहर क्या है? सूक्ष्म बतन हमेशा है, 2000 साल है सूक्ष्म बतन। उनको जब वरदान मिला तो वरदान क्या द्वापर कलयुग में लागू नहीं होता? ये वरदान कलयुग में ही लागू होता है क्या? द्वापर कलयुग में भी ये वरदान लागू होता है ना। तो ये दुनिया के बाहर क्या है? दुनिया के बाहर है परमधाम। न वो इस दुनिया में मरते हैं, न परमधाम में मरते हैं। जो मनन चिंतन मंथन की दुनिया बाबा बनाते हैं, सूक्ष्म वतन, वहां मात खा जाते हैं, मारे जाते हैं। और कोई बात न जमीन में मेरे को कोई मार सके, न आकाश में कोई मेरे को मार सके। धरती को कहा जाता है माता और आकाश को कहा जाता है पिता। वही बात हो गई, जो ऊंचे से ऊंचा स्थान द्युलोक है उसको शास्त्रों में द्यावा पृथ्वी कहा गया है। न धरती पर उनकी मौत होगी, न आसमान में मौत होगी। कहां मौत होती है? जो ब्राह्मणों की दुनिया की सूक्ष्म स्टेज कही जाती है, मनन चिंतन मंथन की स्टेज कही जाती है, वहां आकर के मात खा जाते हैं। एक ही बात हो गई, न मनुष्य उनको मार सके और न जानवर उनको मार सके। मनुष्य मन वाले को कहा जाता है, जिसका मन चंचल हो, मन चलाए मान हो, बिंदु रूप की स्टेज में टिकने वाला न हो, ऐसे मनुष्य कोई उनको नहीं मार सकते और जानवर भी नहीं मार सकते। जानवरों को तो अकल होती ही नहीं, मनुष्यों में भी जानवर जैसे होते हैं। उनको जानवर कहो, राक्षस कहो, वो जानवर संप्रदाय, राक्षस संप्रदाय उनके मौत के कारण नहीं बन सकते। कौन बनता है? वो बनता है उनकी मौत का कारण जो मनुष्य नहीं होता है। जानवर भी नहीं होता है, जानवरों की तरह खूंखार जानवर भी नहीं होता है। कौन होता है? नरों के बीच में सिंह के समान पार्ट बजाने वाला नरसिंहा अवतार कहा जाता है। जैसे शेर संसार रूपी जंगल में एक ही दहाड़ मारने वाला होता है, जिससे जंगल के सारे प्राणी घबरा जाते हैं, तो ऐसे नरों के बीच में संसार रूपी जंगल में ज्ञान की ऐसी दहाड़ मारने वाला न वो जानवर है और न वो मनुष्य है, उसके द्वारा मारा जाता है। गीता में भी यही दिखाया है, महाभारत में भीष्म पितामह इसके द्वारा मारे गए है। शिखंडी तो बीच में था, मारा किसने? अर्जुन ने मारा। अर्जुन ने भी नहीं मारा, वास्तव में अर्जुन के अंदर बुद्धि किसकी काम कर रही थी? भगवान की बुद्धि। कृष्ण तो नाम दुनिया वालों ने रख दिया है। न दिन में न रात में, सत्युग त्रेता रूपी दिन है ब्रह्मा का और द्वापर कलयुग रूपी ब्रह्मा की रात है। न सत्युग त्रेता में मारा जाता, वहां तो हिरण्यकश्यप होता ही नहीं, मारा जाने का सवाल ही नहीं। और द्वापर कलयुग रूपी रात जो ब्रह्मा की गाई हुई है उसमें भी वो मारा नहीं जाता, दिन दूना रात चौगना प्रभाव उसका बढ़ता ही जाता है संसार में। कब मारा जाता है? है? जब संगम होता है रात और दिन का, तब मारा जाता है। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, जहां इन हिरण्यकश्यपों की मौत होती है। हाँ, न किसी अस्त्र से मारा जाता है और न किसी शस्त्र से मारा जाता है। क्या क्या अस्त्र शस्त्र से मौत होती है? क्या स्थूल बाण थे? क्या कोई स्थूल तलवार थी मारने के लिए? नहीं, तो ज्ञान के बाण है जिनसे मौत होती है, अनिश्चय बुद्धि रूपी मौत हो जाती है। ऐसा वरदान भगवान से लिया है, ये गलत लिख दिया है। कौन सी माता नाम लिखा है? विशाल माता, विशालाक्षी माता। भगवान से वरदान नहीं मिलता है हिरण्यकश्यप को। जितने भी विधर्मी हुए हैं वो सब विधर्मी भगवान से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ते हैं, भगवान से दीक्षा लेते हैं, भगवान से वरदान लेते हैं या गुरुओं से वरदान लेते हैं, चाहे वो चंद्रवंशियों में से हो چاہے وہ اسلام ونسیوں میں سے ہوں. اسلام اور مسلم ونسی ہوں گے تو ملا مولویوں سے بردان لیتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں. کرسچن ونسیوں میں سے ہوں گے، پوپ اور پادریوں سے بردان لیتے ہیں. اگر چندر ونش کے ہوں گے تو گیان چندرما برہما سے بردان لیتے ہیں. تو شاستروں میں برہما سے بردان لیتے ہوئے دکھایا گیا ہے ہرنیا کشیپ کو، بھگوان سے بردان نہیں ملتا.
برہما بھی جب شیو پرویش ہوتا ہے تب تو برہما کہا جاتا
ہے.
شیو جب پرویش ہوتا ہے تب تو برہما کہا جاتا ہے.
ٹھیک بات ہے، اس لیے شنکر تو نہیں کہا جاتا. شنکر نہیں کہا جاتا. اور
اس لیے
بھگوان جو ہے جب اس سرشٹی پر آتا ہے تو جس بچے کو آپ سمان بھگوان بھگوتی بناتا ہے وہی باپ سمان کہا جاتا ہے، یا برہما باپ سمان کہا جاتا ہے. جو بھگوان بنتا ہے، بھگوان بھگوتی کا ٹائٹل لیتا ہے وہی بھگوان کہا جاتا ہے. اس لیے نیکسٹ ٹو گاڈ برہما کو نہیں کہا، نیکسٹ ٹو گاڈ پرجاپتا، نیکسٹ ٹو گاڈ شنکر، نیکسٹ ٹو گاڈ کرشن، نیکسٹ ٹو گاڈ نارائن. برہما کو گاڈ کے نیکسٹ نہیں کہیں گے، گاڈ کا وارثدار نہیں کہیں گے.
بنا شیوا صرف برہما کو اتنا طاقت آ گیا ہرنیا کشیپ بردان
ہے.
بنا شیو کے صرف برہما کو اتنا طاقت آ گیا
ہرنیا
بنا شیو کے.
ہاں
شیو کے بنا صرف برہما کو ہی اتنا طاقت ہے کیا وردان دینے کے لیے؟
برہما بنتا کب ہے؟ برہما کہا کس کو جاتا ہے؟ شیو پرویش کرتا ہے تو برہما کہا جاتا ہے. تو کم بات ہے کیا؟ برہما کے واقعوں کو پتھر کی لکیر کہا جاتا ہے، برہمم واقعم جناردنم، کم بات ہے کیا؟ برہما بھی کوئی کم ہستی نہیں ہے. اگر باپ سرو شکتیوان ہے تو مایا کے ساتھ اور کون سا شبد جڑا ہوا ہے؟ مایا راون بھی سب شکتیوان ہے. جیسے راون کو ہاتھوں میں وید شاستر دکھاتے ہیں ویسے برہما کے بھی ہاتھوں میں وید شاستر دکھاتے ہیں. راون دس مکھ والا ہے تو راون کا باپ کون ہے؟ راون کا باپ ہے دیہ ابھیمان. دیہ ابھیمان ابھی بھی جو دیہ ابھیمان روپی گدھا ہے وہ ابھی بھی پارٹ بجائے رہا ہے کسی تن کے دوارا، کہ بار بار گیان جل سے اسنان کیا جاتا ہے، بار 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 دیہ ابھیمانی کی مٹی میں لوٹ جاتا ہے. سارا کیا کرایا سب، جیسے بابا نے بولا کوئی پانچ مار سے نیچے گر گیا تو کیا کرایا پرسارتھ سارا چوپٹ ہو جاتا. یہ بھوتناتھ ہے. کیا ہے؟ بھوتناتھ. مسلمانوں میں اس کا نام دیا ہے جنناتھ، جینیوں میں اس کو نام دیا ہے جن. جن کے بچے کیا کہے گئے؟ جن. तुम बच्चे क्या पुरुषार्थ करते हो? तुम बच्चों को काम मिला हुआ है, क्या काम मिला हुआ है? जिन्न के मिसल चढ़ो और जिन्न के मिसल उतरो, नहीं तो जिन्नात क्या कहता है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और हाँ
है
जबराइल, हाँ जी हाँ जी, जबर जबर माने जबरदस्त।
बाबा देवी देवता धर्म में कैसे सवाठ राजा ये होते हैं, देवी देवता धर्म में सवाठ राजा ये होते हैं,
हाँ
ऐसा दूसरे धर्मों में भी सवाठ सवाठ अलग अलग राजा होते हैं?
दूसरे धर्म में आठ कहाँ से आ जाएंगे? दूसरे धर्म में आठ होते हैं क्या जो सजाए न खाए?
फिर अभी तुम्हारे में कहा गया
इसलिए उनकी सौ की माला होती है। और आज सनातन देवी देवता धर्म की 108 की माला होती है।
तो अभी तुम्हारे में कहा गया ना सवाठ की अलग अलग माला बनाएंगे,
है
सवाठ की अलग अलग माला बनाएंगे। अभी तुम्हारे में कहा गया
वो इसलिए बताया कि जो आठ है सबके सब धर्मों के पूर्वज है, वो आठ संगम युग में सबको कंट्रोल करने वाले, उनको आठ दिग्पाल कहा जाता है। चाहे कोई भी दिशा का धर्म खंड हो, पूर्व दिशा का बौद्ध धर्म खंड हो, पश्चिम दिशा का ईसाई धर्म खंड हो, दक्षिण दिशा का अरब देश और अफ्रीकन धर्म खंड हो, इस्लाम धर्म खंड, कोई भी धर्म खंड हो, संगम युग में उन आठों ही दिशाओं को कंट्रोल करने वाले कौन होंगे? ये अर्थदेव होंगे। ये आठ सबके पूर्वज
मतलब वो सब के साथ ये आठ ऐड हो जाता है।
हाँ जी। और अब अंतिम हो गया बहुत अच्छा। तो द्वापर युग से खुले होते हैं जब आधा विनाश हो जाता है। द्वापर के आदि में त्रेता के अंत में जब आधा विनाश होता है तो दूसरे दूसरे धर्म खंड ऊपर आने लगते हैं। जैसे इस्लाम धर्म खंड पहले ऊपर आएगा, फिर बौद्ध धर्म खंड ऊपर आएगा चीन जापान, फिर क्रिश्चियन धर्म खंड ऊपर आएगा, ऐसे ऐसे ऊपर आते रहते हैं।
बाबा
जनसंख्या दुनिया की बढ़ती रहती है।
बाबा जो बोलते हैं कि यकीन है आदि में जिनकी 70 के ऊपर एज है तो ज्ञान में आए, एडवांस ज्ञान में बाबा, फिर उन्हें शरीर छोड़ने के बाद जो आत्मा अभी ज्ञान में आएगी ना, जन्म लेकर आएगी, एडवांस वाले जो बच्चे होते हैं वो जन्म लेकर पार्ट बजाते हैं, तो फिर बाबा उनका कौन सा जन्म होगा? अभी
जो यज्ञ के आदि में जो बच्चे ज्यादा उम्र के थे और यज्ञ के आदि में ज्ञान में आए, फिर शरीर में छोड़ दिया, तो दोबारा जन्म लेकर के नहीं आए हुए?
हाँ आएंगे ना बाबा।
हाँ।
तो फिर उनका कौन सा जन्म होगा? जैसे ये तो 84 जन्म में नहीं आते ना, बाबा ने बोला कि रामवादी आत्माओं के साथ में उन्होंने एकादि पाठ नजदीक का बजाया है।
हाँ।
इसलिए उन्होंने बाप को पहचान लिया।
हाँ?
तो फिर उनका कौन सा जन्म होगा?
जब बाप का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म हो सकता है तो उन बच्चों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म नहीं हो सकता?
अच्छा। फिर बाबा जो फिर
बच्चों का भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म।
हाँ।
और बाप का भी
एक्स्ट्रा
ऑर्डिनरी जन्म, वो पहला जन्म भी है।
हाँ।
और वो लास्ट जन्म भी।
अभी जो आत्मा आएगी ये लेकर जन्म लेकर आएगी वो भी ज्ञान में आएगी।
हाँ।
तो फिर उनको क्या कहेंगे? उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहेंगे हम?
राम वाली आत्मा को क्या कहेंगे अभी?
नहीं, राम वाली आत्मा को तो कहेंगे हम।
तो जैसे राम वाली आत्मा है, पहले जन्म ले चुकी थी, दोबारा आई, तो ऐसे ही वो बच्चे भी पहले जन्म ले चुके थे, अभी फिर आ गए।
नहीं, राम वाली आत्मा तो पूरे 84 के चक्कर में आती है ना बाबा।
हाँ, तो वो आत्मा जो उसको फॉलो करने वाले एडवांस वाले बच्चे हैं, वो भी 84 के चक्कर में आते हैं।
एकादी पार्ट उनके लिए क्या बोला गया है बाबा? एकादी पार्ट उन्होंने नजदीक का बजाया, माने वो 84 जन्म वाले नहीं थे ना आत्माएं, 84 जन्म लेने वाले थे क्या? फिर यज्ञ के बाबा ने बोला है कि जो 70 के ऊपर है, एकादी नजदीक का पार्ट बजाया उन्होंने राम वाली आत्मा।
आप ये कहिए कि इस समय जो आत्मा एडवांस में है और 80 साल के हैं, वो यज्ञ के आदि में नहीं थे क्या?
नहीं थे,
लेकिन एडवांस में अभी हैं, तो वो एडवांस में कैसे आ गए? हाँ, वो 84 जन्म लेने वाले साबित होंगे या नहीं होंगे?
हाँ,
ये पूछिए। हाँ, तो ऐसी आत्माएं जो है वो यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा के साथ ज्ञान में भले नहीं थी, लेकिन राम वाली आत्मा के साथ लौकिक जन्म में उन्होंने उनका साथ लिया।
हाँ, बराबर।
इसलिए उनके अंदर राम वाली आत्मा के संस्कार मौजूद हैं।
हाँ,
जिसके कारण वो अभी एडवांस में आ रहे हैं,
आ रहे हैं और पहचान लिया है।
और पहचान लेते हैं,
अब उन्होंने शरीर छोड़ दिया।
शरीर छोड़ देंगे, फिर दोबारा जन्म लेके एडवांस में आ जाएंगे।
हाँ, तो उनको कौन से जन्म वाले फिर?
उनको जब दोबारा ज्ञान में आ जाएंगे शरीर छोड़ने के बाद, तो उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म हो गया।
अच्छा, उस बच्चों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म। बाबा, ज्ञान मार्ग में ब्रह्मा को, सरस्वती को ब्रह्मा की बेटी कहा है, लेकिन भक्ति मार्ग में युगल कहा है, तो उसकी शूटिंग यहाँ पर कैसे हुई संगम में? भक्ति मार्ग में जो युगल कहा,
अभी अभी ब्रह्मा बाबा की बेटी नहीं थी, है?
ज्ञान मार्ग में तो बेटी है बाबा, लेकिन
ज्ञान मार्ग में बेटी है, लेकिन यशोदा को सारे यज्ञ का कारोबार सौंपा जो उनकी युगल थी, या मम्मा को सौंपा? तो युगल कौन हुई? प्रैक्टिकल में युगल किसको कहा जाए? मम्मा को। कहते भी है मम्मा बाबा, नहीं तो बेटी बाबा कहे ना, बहन जी कहे ना, दीदी कहे ना, दीदी तो नहीं कहा।
उनके लड़के नहीं आएंगे बाबा?
हैं?
उनके लड़के नहीं आएंगे। लड़के थे वो लोग।
हाँ,
वो नहीं आएंगे, एक लड़की आई हुई थी ना,
श्रीलंका का मतलब क्या होता
है?
श्रीलंका का मतलब क्या
होता
है? श्रीलंका,
श्रीलंका, श्रीलंका, श्री माने श्रेष्ठ, लंका नगरी जो है किसने बनाई थी? रावण ने बनाई थी, जो बोलते शिव ने बनाई थी। लंका किसने बनाई? शेष से शेष शिव ने बनवाई थी, इसलिए उसका नाम श्रीलंका है। बाद में पार्वती ने जब हट की थी कि हमको ऐसी नगरी चाहिए जहाँ ऐसा हो वैसा हो, तो उन्होंने कहा अच्छा, जबरदस्ती करती है तो हम बनाए देते हैं। पहुंच गए, फिर उद्घाटन किया, उद्घाटन किया तो पंडित जी को बुलाया, पंडित जी की पत्नी खोचर थी, वो कहने लगी पंडित जी ये दक्षिणा में ले लो, बहुत बढ़िया नगरी है। तो उन्होंने दक्षिणा में मांग ली, अब दक्षिणा तो देनी पड़े पार्वती बिचारी, इसलिए बनवाई किसने? श्रेष्ठ श्रेष्ठ शिव ने बनवाई, तो उसका नाम श्रीलंका गलत लिख दिया क्या? सही है।
लंका का क्या मतलब हुआ
है?
लंका का मतलब क्या हुआ?
ये सारी दुनिया लंका ही हो गई ना।
एक तरफ मुझे भी कहा है कि जो पूरा कर्म इंद्रिया पर राज्य प्राप्त करता है, कर्म इंद्रिया पर राज्य करता है, माना शरीर की प्रजा के ऊपर राज्य करता है, तो वो राजा बनता है।
जो यहाँ संगम में कर्म इंद्रियों पर राज्य करेगा वो राजा बनेगा।
उसकी तरफ बोला है कि तू जितना ज्ञान धारण करेगा उतना राजा बने
नहीं
दूसरे तरफ का ज्यादा पढ़ाई पड़ेगा वो राजा बनेगा।
हाँ?
और ये और बोला है जो अपनी प्रजा के ऊपर राज्य करता मतलब ठीक के ऊपर राज्य करता है वो राजा बनेगा।
प्रजा के ऊपर राज्य करता है वो राजा इंद्रिया प्रजा नहीं है।
हाँ, तो बाड्राम में कैसे कैसे राजे बाड्राम में कैसे कैसे राजे
ब्रॉड ड्रामा।
हाँ, जो यहाँ इंद्रियों पर राज्य करेगा वो वहाँ सारी प्रजा के ऊपर राज्य करेगा। अभी इंद्रियां हमारी प्रजा है क्या, हमें किसको कंट्रोल करना है? अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है। तो इंद्रियों को सही तरीके से अगर कंट्रोल कर लिया तो हम वहाँ प्रजा को भी उतना ही कंट्रोल करेंगे। यहाँ इंद्रियों को अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो वहां प्रजा को भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। और दूसरी बात, ज्ञान धारण करने की बात है। जो ज्ञान धारण कर रही है उसका लक्ष्य क्या है? ज्ञान जो हम धारण कर रहे हैं, जो हमें ज्ञान भगवान से मिला है, उसका लक्ष्य क्या है? इसलिए धारण कर रहे हैं पवित्र रहने के। ज्ञान का मुख्य मकसद क्या है? कि हम इतने पवित्र बने, हमारी आत्मा इतनी पवित्र बने कि जो इंद्रियां अभी दूषित हो गई हैं उनके ऊपर कंट्रोल कर लें। मन बुद्धि जो दूषित हो गई है उसको कंट्रोल करें। तो बात तो एक ही हो गई।
राजा के ऊपर राज्य करता है,
ये ब्रह्म कुमारियों का ज्ञान है कि हम यहाँ जितना कंट्रोल कर लेंगे उतने बड़े हम प्रजा बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे। तो यहाँ कंट्रोल करना है कि सेवा करना है? यहाँ तो सेवा करना है। क्या यहाँ जो जितना कंट्रोल कर लेगा, आत्माओं को कंट्रोल करेगा, वो वहां दास दास ही बनेगा। बड़ा ब्राह्मण यहाँ जो जितनी आत्माओं की सेवा करेगा, सेवादारी बन के रहेगा। सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवा भी करे और उनकी बातें भी सुने। ऐसी जो सेवा करेगा वो वहां राजा बनेगा।
सेवा किसको करेगा?
आत्मा की सेवा करो। अगर शरीर बीमार है, सरेंडर है कोई माता या कन्या, तो उसकी सेवा करो। तन की भी सेवा करो, मन की भी सेवा, मन से भी खुश रखो। दवाई दारू की भी सेवा करो, खाना पीना भी ठीक से खिलाओ। ज्ञान की भी सेवा करो। सेवा किसी भी तरह की सेवा है, जिससे मेवा मिले खुशी की।
और किसी का कल्याण चाहना वो भी सेवा होगी?
चाहने मात्र से सोड़ा ही हो जाता है, करना भी पड़ता है। बोलो।
बाबा मुरलियों में कहते हैं मैं अपना काम करने आता हूँ, सृष्टि में बनाने आता हूँ, तो ये मोदी में ये भी कहते हैं मेरी सत्ता के बगैर पत्ता भी नहीं उठ सकता। और दूसरे मोदी में ये भी कहते हैं मैं पावर बनाकर तुमको चक्रवर्ती राजा भी बनाता हूँ। कि ये कैसा
कैसा कैसा क्या कैसा?
मैं तो बोलते अपना काम करने आता हूँ।
मैं अपना काम करना, उसका अपना काम कौन सा है? अपना काम तो उसका कुछ है ही नहीं।
मोदी में ये भी तो कहते हैं मेरी सत्ता के बगैर पत्ता नहीं उठ सकता।
तो दोनों बातें अलग अलग हो गई ना। एक बात पूछो, पतित या तो पतित पावन की बात पूछो, या तो मेरी सत्ता के बगैर पत्ता भी हिल सकता नहीं, खिले न कोई फूल।
ये काम किसका? बाबा का नहीं।
सत्ताधारी मनुष्य आत्माएं बनती है या शिव बनता है? कौन बनता है? मनुष्य आत्माएं सत्ताधारी बनती है। मनुष्य आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य आत्मा है नारायण, जो विश्व का मालिक बनती है। वो ऐसा विश्व का मालिक बनती है कि उसके राज्य में बिना उसकी सत्ता के, इच्छा के, एक पत्ता रूपी आत्मा भी हिल नहीं सकती। इसलिए गायन है, सत्ता तेरी के बिना पत्ता भी हिल सकता नहीं। आगे चल करके जब ये ब्राह्मणों का किला ऐसा बन जाएगा मजबूत, जिसमें एक भी विकारी पांव न रख सके, तब वो सत्ता को दुनिया देखेगी। कि ऐसी सत्ता तैयार हो चुकी जिसकी हर तरह की कंट्रोलिंग एक की मुट्ठी में है।
कोई भाई अकेला भी रहता है बाबा जी, और बाद में जब उसका मातापन हो जाता है उसको
है?
कोई भाई अकेला रहता है,
बुरा बन जाता है बुरा,
और उसको बुढ़ापा अगर आता है
बुढ़ापा आता है। कोई भाई अकेला रहता है ज्ञान में परिवार में, और अपने लौकिक परिवार में अकेले हुए होते हुए भी बुढ़ापा आ जाता है। हाँ, तो
उसका संभाल करने के लिए तो कोई रहता ही नहीं घर में उनके,
उनके उसके घर में उसके परिवार में उसकी संभाल करने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि वो अकेला है, है? तो जो अकेला है वो अपने को अकेला क्यों समझता है जबकि बाप आया हुआ है? जब बाप आया हुआ है तो वो अकेला अपने को क्यों समझता है? अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपने संपर्क वाले, अपने संबंधी जो भी हो थोड़े बहुत, उनको अपनी मुट्ठी में क्यों रखता है?
तो अज्ञानी रहेंगे दोनों
हैं,
वो जो उनके संबंध है वो अज्ञानी रहेंगे।
हाँ, कुछ कुछ तो संबंध होता है, ऐसा तो कोई होता नहीं कि समाज में उसका कोई संबंध ही ना हो, थोड़ा बहुत तो संबंध होता है। तो जितना भी संबंध होता है, जितना भी संपर्क होता है, जितना भी संसर्ग होता है, जितना भी धन होता है, जितना भी तन की ताकत होती है, जितना भी मन की ताकत है, बुद्धि की ताकत है, वो अपनी मुट्ठी में क्यों रखता है जो अकेला महसूस करता है? क्या करें है? मुरली में तो बोला है बाप का बच्चा होगा तो बाप को सब कुछ हवाले कर देगा, फिर अकेलापन महसूस करेगा या बाप का बच्चा हुआ?
बाबा मैंने बहुत सी बार एक दो बार चिट्ठी लिखी लेकिन सबके उत्तर आए, मेरा आता चली
आता ही नहीं। मुरली में बाबा बोलते हैं मैं रोज मुरली भेजता हूँ, ये मेरी चिट्ठी है
नहीं, ये ठीक
और चिट्ठी मुरली से हर समस्या का समाधान हर बच्चे को जरूर मिल जाता है। तो आपने कैसे कह दिया हमको मुरली का जवाब, हमारी चिट्ठी का जवाब नहीं मिलता?
नहीं, कौन सी
अगर नहीं, नहीं क्या
समस्या अगर लिख के दी?
हाँ, समस्याओं का, हर समस्या का समाधान रोज की मुरली से मिलता है और सब अनुभव करते हैं।
बाबा सबको चिट्ठी आई और मेरे को चिट्ठी,
फिर वही बात, सबको चिट्ठी आई, आपको स्पेशल रोज चिट्ठी भेजी जाती है। वो चिट्ठियाँ तो हद की है, किसी को जाएंगी और किसी को नहीं जाएंगी, लेकिन ये चिट्ठी तो सबको मिल रही है।
बाबा मुरली में कहा है कि नारायण को याद करना सबसे अच्छा पुरुषार्थ है, तो लेकिन अभी तो नारायण बने नहीं है, लेकिन आत्मा ही
नारायण बने नहीं है, हमसे हम ज्यादा आपसे पुरुषार्थी है नारायण, हम बढ़िया पुरुषार्थ की नारायण तो बेकार का पुरुषार्थी है, क्या
लेकिन आत्मा ये जानती है बाबा की भले ही अभी नारायण बने नहीं है, लेकिन
नारायण बने नहीं है,
लेकिन आत्मा ये जानती है कि नारायण का पार्टधारी कौन है। तो जो याद करने का है जो कहा गया है, तो ये अंत का कहा गया बाबा कि नारायण को याद करना, क्योंकि नारायण बनने के बाद तो फीचर्स भी अभी की जो है वो चेंज हो जाएंगे।
अभी बुद्धि में फिट बैठा नहीं है, इस तरह का प्रश्न करने का मतलब अभी बुद्धि में फिट नहीं बैठा है कि विश्व का बादशाह कौन बनेगा, नारायण कौन बनने वाला है, शिव बाबा का मुकर्रर कौन है, ये बुद्धि में अभी 100% बैठा नहीं है, इसलिए कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, दूसरों का आधार लेते रहते। किसको फॉलो करें, किसकी बात पढ़ने है? नारायण की ना, बाबा की बात माना, नारायण और बाबा अलग अलग हो गया क्या? एक ही तो हुआ क्या? अनिश्चय बुद्धि के प्रश्न हो जाते हैं ये सब।
भक्ति मार्ग में कृष्ण या राम को भी छोटा बड़ा बताते हैं, तो ज्ञान मार्ग में अर्जुन जो अर्जुन को भी लंबा लंबा बताते हैं, ऐसा क्यों बताया?
जो राम और कृष्ण है उनकी जो स्टेज है वो अष्टदेवों की स्टेज है क्या, कि अलग अलग है? अष्टदेव तो बाद में प्रत्यक्ष होते हैं,
और त्रिदेव तो पहले ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं, तो बड़े कौन हुए? त्रिदेव फिर भी बड़े हो गए।
बाबा जिन बातों में सच्चाई हो और वो सच्चाई रहने के बाद थोड़ा सा भूल गया तो क्या पाप होता है?
सच्चा बोलना पाप होता है?
नहीं, समझो घर गृहस्थी में है और कोई बात मानता ही नहीं वो और अपनी अपने में सच्चाई है, सच्चा सच्चा करते मर गए और तो फिर तो थोड़ी सी दो बातें ज्यादा की बोल दी तो वो पाप है।
सच्चा सच्चा करते करते मर गए,
यानी जिंदा खींच गई अपनी अभी एक जन्म की।
सच्चा तो मरता ही नहीं, सच्चाई नहीं मरती है।
सच्चाई नहीं मरती लेकिन लौकिक के हिसाब से समझो कोई बात अपने कितना भी अच्छा बोलो फिर भी वो जिंदगी भर अपने इस पर अटल रहते हैं कि नहीं नहीं मानेंगे बात, वो बुरी भी हो फिर भी बात नहीं मानेंगे और बात मेरी सच्ची भी हो फिर वो करेंगे अपनी मन कर। तो फिर अगर दो बातें ज्यादा बोल दी तो वो पाप होता है।
सत्य क्या है और झूठ क्या है ये बताने के लिए मनुष्य गुरु काफी है या भगवान को आना पड़ता है?
फिर भी घर
ये फैसला करना सबके बस की बात नहीं है। हम समझ लेते हैं कि हम सच्चे हैं, अगर सच्चे हैं तो हम जरूर हमारी बात दूसरे को माननी पड़ेगी। ऐसे हो नहीं सकता कि हम सच्चे
मानते हैं लेकिन संघर्ष होता है
होने ना।
हाँ तो यही तो पूछ रहे बाबा, पाप
संघर्ष संघर्ष खराब खराब बात है क्या? सच्चाई के लिए संघर्ष करना ये खराब बात है?
वो बात तो मानते हैं, माननी ही पड़ती, फिर भी संघर्ष होता है ना।
होने दो ना, संघर्ष से सच्चा डरता है क्या?
नहीं लेकिन टेंशन होता ना।
टेंशन झूठे को होता है, सच्चे को मजा आता है लड़ाई करने। जो झूठा होगा उसको टेंशन, क्या करे पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे।
नहीं जीतेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा।
अरे तो जिसको पक्का निश्चय है, ध्रुव सत्य है, बुद्धि में बैठा हुआ, हमारी विजय वही पड़ी है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।
लेकिन ऐसा थोड़ा दुख होता है कि अपने साथ
जो दुख होता है वो इसीलिए होता है कि हम गलत रास्ते पर हैं, गलत बोलते हैं, गलत करते हैं। अगर हम सच्चे पटे पर हैं तो कभी भी दुख होगा ही नहीं। सच्च खंड से, सच्चाई से हमेशा सुख होता है, दुख नहीं होता। और सच्चाई सर के ऊपर चढ़ के बोलती है। वही चार चित्रों का क्लेरिफिकेशन सन 76 में, 74, 75 में जो चिट्ठियों में लिख करके रजिस्टर्ड कोर्ट से माउंट आबू भेजा गया था, उस समय अगर उन्होंने मान लिया होता, माउंट आबू के जो सरपरस्त बैठे हुए थे, सच्चाई उस समय स्वीकार कर ली होती, तो आज माउंट आबू में ये एडवांस पार्टी क्यों सर पे चढ़ के जाके बैठती? बैठती नहीं।
बाबा एक वार्तालाप में बोले कि जो सूर्यवंशी होते हैं उनके मन में प्रश्न आते ही नहीं है,
है?
जो सूर्यवंशी बच्चे होंगे उनके मन में प्रश्न आते ही नहीं है, तो पढ़ाई पढ़ते हुए यदि कोई प्रश्न निर्माण होते हैं तो वो सूर्यवंशी नहीं कहा जाएंगे? बाबा
जो क्वेश्चन है वो क्यों लगाता है? कहते हैं रामायण में राम ने रावण को बाणों से सर उड़ाने का तांता लगा दिया, बाण मारता गया, सर उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए, सर नहीं नहीं निकलते गए। तो ये कौन सी कथा है, है?
प्रश्न,
ये कहाँ की बात है?
प्रश्न उठते
जैसे संगम युग की बात है। कैसे वो सर तब तक निकलते गए जब तक कि नाभि कुंड में बाण नहीं मारा। ये नाभि जो है ऐसा स्थल है जहाँ 16,000 नसें नाड़ियां जाकर के इकट्ठी होती है। 16,000 नसें नाड़ियों की संगठन तैयार होता है वहां, उसके लिए बाप दादा ने अभी बोल दिया विजय माला का आवाहन करो। वहां 16,000 नशेनानी अपने आप बंद जाएंगी, तब तक ये प्रश्नों का ताता चलता ही रहेगा।
पढ़ाई पढ़कर तुम ट्रांसफर हो जाओगे ऐसे बाबा मुरलियों में,
माने एडवांस की पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं और पढ़ करके विष्णु पार्टियों में ट्रांसफर हो गए, वो ट्रांसफर हो गए ये बात विष्णु पार्टियों में चले गए माने ट्रांसफर हो गए। अब ये तो तुम बताओ, अगर कहेंगे ट्रांसफर हो गए तो तुमने वो माफीनामा क्यों लिखा, तो ट्रांसफर हो गए और yeah।